लीजिए सुनिए रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी छुट्टी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव के सब लड़कों के सरदार फटिक चंद्र चक्रवर्ती के दिमाग में अचानक एक नया खेल सूझा। नदी के किनारे बड़ा भारी एक साखू का लट्ठा मस्तूल के रूप में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ा था। तय हुआ कि उसे सब मिलकर लुढ़काकर नदी में बहा दें। जिस आदमी का लट्ठा है, ठीक जरूरत के वक्त उसे कितना अचंभा होगा, कितना गुस्सा आएगा और कितनी परेशानी होगी, इस बात का मन ही मन अंदाजा लगाकर लड़कों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह से अनुमोदन किया। कमर बांधकर सब कोई जब बड़ी दिलचस्पी के साथ काम में जुटने को तैयार हो गए, तब फटिक का छोटा भाई माखनलाल बड़ी गंभीरता से उस लट्ठे पर जमकर बैठ गया। उसके खेल संबंधी इस उदार उदासीनता को देखकर और सब लड़के मुरझा से गए। एक ने पास जाकर डरते डरते उसे धक्का भी दिया, पर उससे वो रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। आश्चर्य है, चारों तरफ इतना प्रलोभन होने पर भी वो अकालपक्क मानव पुत्र ज्यों का त्यों चुपचाप बैठा हुआ दुनिया के सब तरह के खेल कूदों की असारता के विषय में गंभीर विचार करता रहा। कोई भी उसे विचलित न कर सका। अंत में फटिक ने आकर बड़े रोब के साथ उछलकर उससे कहा, देख मार खाएगा, नहीं तो उठ अभी। इस पर उसने जरा और भी हिलडुलकर अपने आसन को खूब मजबूत बना लिया। ऐसी दशा में सर्वसाधारण के सामने अपने राजकीय सम्मान की रक्षा के लिए फटिक का कर्तव्य था कि वो कहना न मानने वाले छोटे भाई की कनपटी पर फौरन ही कस के एक तमाचा जड़ देता, लेकिन हिम्मत न पड़ी। फिर उसने ऐसा भाव धारण किया कि मानो वो चाहे तो अभी उसे अच्छी तरह दुरुस्त कर सकता है, पर करता नहीं, क्योंकि पहले से अब की उसके दिमाग में और भी एक अच्छा खेल सूझ गया और उसमें इससे भी ज्यादा मजा आएगा। उसने प्रस्ताव किया कि माखन समेत उस लट्ठे को लुढ़का दिया जाए। माखन ने सोचा कि इसमें उसी का गौरव है, परंतु ये बात उसके या और किसी के दिमाग में नहीं आई कि इसमें और पार्थिव गौरवों की तरह आनुषंगिक विपत्ति की भी संभावना है। लड़कों ने कमर बांधकर लट्ठा लुढ़काना शुरू किया। मारो ठेला है यो, और भी थोड़ा है यो, शाबाश जुआन है यो। लट्ठा एक चक्कर घूम भी न पाया कि इतने में माखन अपने गंभीर गौरव और तत्वज्ञान समेत चारों खाने चित्त जमीन पर जा गिरा। खेल के प्रारंभ में ही ऐसा आशातीत फल पाकर और लड़के बड़े खुश हो उठे, मगर फटिक जरा कुछ घबरा सा गया। माखन उसी दम बड़ी फुर्ती से उठकर फटिक पर टूट पड़ा और बिल्कुल अंधे की तरह दोनों हाथों से मारने नोचने चिपट गया। उसने फटिक की नाक पर गाल पर जहां पाया नोच खाया और फिर रोते रोते घर की तरफ चल दिया। बस खेल खत्म। फटिक थोड़ी सी कांस उखाड़कर उसे हाथ में लिए हुए एक अध डूबी नाव की नौक पर जा बैठा और चुपचाप बैठा बैठा कांस की जड़ चबाने लगा। इतने में दूसरे गांव की एक नाव आकर घाट से लगी। उस पर से एक अधेड़ आदमी जिसकी मूछें काली और बाल सफेद थे उतरा। उसने लड़के से पूछा, चक्रवर्तियों का घर किधर है लल्ला? लड़के ने कांस चबाते हुए कहा, वो रहा। पर उसने किधर इशारा किया कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, कहाँ? जवाब मिला, नहीं जानता। कहकर पहले की तरह फिर वो हाथ की घास से रस ग्रहण करने लगा और पथिक बेचारा और किसी की मदद से अभीष्ट स्थान की तलाश करने चल दिया। कुछ देर बाद बाघा नौकर ने आकर फटिक से कहा, फटिक भैया, माँ जी बुला रही हैं। फटिक ने कहा, नहीं जाता, जा। पर बाघा पूरा बाघा ही निकला। उसने जबानी जमा खर्च न करके तुरंत उसे गोद में लटकाया और चल दिया। फटिक मारे गुस्से के हाथ पैर पटकता रहा, पर व्यर्थ। फटिक को देखते ही उसकी माँ खूब गुस्सा हुई और बोली, फिर तैने माखन को मारा? फटिक ने कहा, नहीं मैंने नहीं मारा। फिर झूठ बोला? हरगिज नहीं मारा, माखन से पूछो ना। माखन से पूछा गया तो उसने अपनी पहली की शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हां मारा है। अब फटिक से ना रहा गया। तेजी से लपक कर उसने माखन के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। बोला, फिर झूठ? मां ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को जोर से झकझोर डाला और ऊपर से कसकर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने मां को ढकेल दिया। मां ने चिल्लाकर कहा, तू हम पर हाथ उठाएगा? इतने में वो आदमी भी आ पहुंचा जिसने नाव से उतरकर फटिक से चक्रवर्तियों के मकान का पता पूछा था। घर में घुसते ही उसने कहा, क्या हो रहा है तुम लोगों में? फटिक की माँ ने आश्चर्य और आनंद में आकर कहा, अरे ये तो भैया आ गए, तुम कब आए भैया? और भाई को प्रणाम किया। बहुत दिन हुए फटिक की माँ के भैया पछाह की तरफ नौकरी पर गए थे। इस बीच में फटिक की माँ के दो लड़के हुए और वे बड़े भी हो गए। आखिरी लड़का होने के कुछ दिन बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, पर तब से एक बार भी उसके भैया अपनी विधवा बहन से मिलने नहीं आए। आज बहुत दिन बाद छुट्टी पाकर विश्वंभर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन खूब हंसी खुशी में कटे। अंत में विदा होने के दो एक दिन पहले विश्वंभर बाबू ने बहन से लड़कों की पढ़ाई लिखाई और दिमागी तरक्की के बारे में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि फटिक बड़ा ढीठ बड़ा उजड्ड हो गया है, पढ़ने में उसका जरा भी मन नहीं लगता। और माखन शांत है, सुशील है, पढ़ने लिखने में भी वो तेज है। बहन ने कहा, फटिक के मारे तो मेरी नाक में दम आ गया है। सुनकर विश्वंभर ने कहा कि फटिक को वे कलकत्ता ले जाकर वहीं अपने पास रखकर पढ़ाएंगे। विधवा इस प्रस्ताव पर सहज ही राजी हो गई और फटिक से पूछने लगी, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक ने उछलकर जवाब दिया, हां जाऊंगा। फटिक को भेजने में उसकी मां को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं एक दिन फटिक मक्खन को नदी में न गिरा दे, या उसका सिर न फोड़ दे, या किसी अन्य खतरे में न डाल दे। लेकिन इसके साथ ही वो फटिक के कलकत्ता जाने पर होने वाली व्याकुलता से थोड़ी सी नाराज भी थी। हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? फटिक अपने मामा को पूछ पूछ कर परेशान किया करता था। वह उसका उत्साह उसे रात भर सोने नहीं देता था। आखिरकार उसने जाने की खुशी में अपनी सारी चीजें, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, बड़ी सी पतंग, खेलने के पत्थर, सब मक्खन को दे दिए। यहां तक कि जाते वक्त वो माखन के प्रति काफी उदार हो गया था। जब वो कलकत्ता पहुंचे तो फटिक पहली बार मामी से मिला। ये नहीं कहा जा सकता कि मामी इस अनावश्यक पारिवारिक विकास से विशेष रूप से खुश थी। उनके तीन बेटे ही उनके संभालने के लिए पर्याप्त थे, अतिरिक्त की कोई आवश्यकता नहीं थी। और गांव में पले बढ़े एक 14 साल के बच्चे का घर में आना उन्हें बहुत निराशाजनक लगा। विश्वंभर को सचमुच ऐसा निर्णय लेने के पहले एक बार सोचना चाहिए था। मानवीय संबंधों में एक 13-14 साल के बच्चे का आना बहुत बड़ी बाधा है। ना तो वो सजीला है और ना किसी काम का। सिर्फ इस कारण कि वो छोटा है, उस पर प्रेम की बौछार नहीं की जा सकती। और फटिक को उस घर में यही सब कुछ मिला। अगर वो एक बचपने के साथ बात करता है तो उसे एक बच्चा कहा जाता है और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, और अगर वो गंभीरता से जवाब देता है तो उसे अहंकारी कह दिया जाता है। वास्तव में उसे हर बात पर झिड़का जाता है। किशोर अवस्था आने पर बच्चों के कपड़े छोटे होने लगते हैं और देखने में वो कुछ भद्दे भी लगने लगते हैं। इसके बाद चेहरा भी कुछ बेकार सा दिखने लगता है। उनके बचपन की शान और उनकी आवाज़ की मिठास अचानक फीकी पड़ जाती है। उनकी आवाज़ कर्कश हो जाती है। उनका कुछ भी बोलना एक बेहुदा हिमाकत सी मालूम होती है। उनके बचपन का लालित्य और कंठ की मधुरता जो चली जाती है, उसके लिए लोग उसी को मनी मन अपराधी समझते हैं। बचपन और जवानी के बहुत से दोष माफ किए जा सकते हैं, पर इस समय की कोई स्वाभाविक अनिवार्य त्रुटि भी असह्य मालूम होती है। और वो भी सर्वदा मन ही मन इस बात को महसूस करता रहता है कि दुनिया में कहीं भी वो ठीक ठीक जचता नहीं। इसीलिए अपने अस्तित्व पर वो हमेशा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। परंतु मुश्किल ये है कि ठीक इसी उम्र में ऐसे लड़कों के मन में स्नेह के लिए सीमा से कुछ ज्यादा व्याकुलता पैदा हो जाती है। इस समय अगर वो किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह प्यार या मित्रता सी कोई चीज पा जाए तो उसका वो खरीदा हुआ गुलाम सा बन जाए। लेकिन अफसोस कि उससे स्नेह करने में किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फिर उसे सब कोई सिर चढ़ना समझने लगते हैं। यही वजह है कि इस उम्र में ऐसे बच्चों का चेहरा और मन का भाव लगभग बिना मालिक के राह के कुत्ते जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी दशा में माँ के घर के सिवा दूसरी कोई जगह ऐसे बच्चों के लिए नरक से कम दुखदायक नहीं। चारों तरफ की स्नेह शून्य विरागता कदम कदम पर उसके कांटे की तरह चुभती रहती है। इस उम्र में साधारणतः नारी जाति किसी एक श्रेष्ठ स्वर्गलोक की दुर्लभ वस्तु सी मालूम पड़ती है, और इसीलिए किसी नारी की तरफ से अनादर होना उनके लिए बहुत ही वेदनादायक होता है। फटिक अपनी मामी की स्नेहहीन आंखों में अशुभ ग्रह की तरह खटकने लगा और ये बात उसे सबसे ज्यादा अखरने लगी। उसकी मामी अगर उससे कभी किसी काम के लिए कहती तो वो मारी खुशी के फूला न समाता और उस खुशी में वो जरूरत से ज्यादा काम कर डालता। लेकिन मामी ही जब उसके उत्साह का दमन करके कहने लगती कि बस अब बहुत हो गया, अब रहने दो, अब तुम जाकर अपने काम में मन लगाओ, जाओ जरा पढ़ो लिखो, तो उसे अपनी मानसिक उन्नति के प्रति मामी का इतना ज्यादा ध्यान देना अत्यंत निष्ठुर अन्याय सा मालूम होता। घर के भीतर ऐसा अनादर और बाहर ऐसी कोई जगह नसीब नहीं जहां जाकर दो घड़ी मन बहला ले या भरपेट ऊधम मचा ले। घर की चार दीवारी के अंदर कैद रहते रहते उसे अपने गांव की ही याद आने लगी, जिससे अकुलाकर वो बड़े शौक से शहर चला आया था। वहां का वो खुला हुआ मैदान जहां दिन भर पतंग उड़ा करती थी, नदी का वो किनारा जहां बांस की बांसुरी की तान छिड़ा करती थी और जब मन में आया तब पानी में कूद कर तैरने की छूट पट्टी थी, वे सब साथ के खिलाड़ी लड़के, वो ऊधम, वो आज़ादी और सबसे बढ़कर वो रात दिन बगझक करने वाली और ठोंकने पीटने वाली माँ दिन रात उसके बेकस मन को अपनी ओर खींचने लगी। बेचारे उस लज्जित शंकित दुबले पतले लंबे असुंदर बालक के अंतःकरण में बार बार जानवरों जैसा एक तरह का नासमझ प्रेम, सिर्फ पास जाने की अंधिच्छा, सिर्फ एक बिन देखी चीज के लिए अव्यक्त आकुलता, गोधूली के समय मात्रहीन बछड़ी की तरह का केवल एक आंतरिक माँ माँ क्रंदन उमड़ने लगा। स्कूल भर में उससे बढ़कर मूर्ख और पढ़ने से जी चुराने वाला दूसरा कोई लड़का ही न था। कोई बात पूछने पर वो ऊपर मुंह बाए खड़ा रहता। मास्टर साहब जब मारना शुरू करते तो बोझ से लदे गधे की तरह वो चुपचाप सब सह लेता। लड़कों की जब खेलने की छुट्टी होती तब वो जंगल के पास खड़ा खड़ा दूर के मकानों की छत देखा करता। जब उस दोपहर की घाम में किसी छत पर एक दो लड़की लड़के खेलने के बहाने क्षण भर के लिए दिखाई देते तब उसका चित्त अधीर हो उठता। एक दिन उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय करके और खूब हिम्मत बांधकर अपने मामा से पूछा था, मामा माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा था, स्कूल की छुट्टी होने दो, कुंवार में दशहरी की छुट्टी होगी, उसे तो अभी बहुत दिन है। एक दिन की बात है कि फटिक से स्कूल की किताबें खो गईं। एक तो वैसे ही पाठ याद नहीं होता, उस पर खो गई किताबें, बेचारा बिल्कुल लाचार हो गया। मास्टर ने उसे रोजमर्रा मारना पीटना और बेइज्जत करना शुरू कर दिया। स्कूल में उसकी ऐसी दशा हो गई कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ संबंध स्वीकार करने में शर्मिंदा होने लगे। फटिक को अपमानित होते देखते तो वे और लड़कों से कहीं ज्यादा खुशी जाहिर करते। जब बहुत ही असह्य हो उठा तब फटिक अपनी मामी के पास जाकर बड़े भारी अपराधी की तरह खड़ा होकर बोला, किताबें खो गई हैं। मामी ने अपने ओठों के दोनों किनारों पर क्रोध की रेखा अंकित करते हुए कहा, अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए महीने में पांच पांच बार किताबें नहीं खरीदवा सकती। फटिक चुपचाप लौट आया। वो पराया पैसा बर्बाद कर रहा है इस बात का ख्याल करके उसे अपनी माँ पर बड़ा भारी गुमान हुआ और क्रोध भी आया। अपनी हीनता और दीनता की शर्म से वो गड़गड़ गया। स्कूल से लौटने पर उसी रात को फटिक के सिर में दर्द शुरू हुआ और भीतर से उसका जी घबराने लगा। समझ गया कि उसे बुखार चढ़ रहा है। साथ ही ये भी महसूस करने लगा कि अगर वो बीमार पड़ गया तो मामी के लिए वो फजूल की एक आफत और बन जाएगा। उसकी ये बीमारी उनके लिए कैसा जी जलावा स्वरूप धारण करेगी, फटिक इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा था। बीमारी की हालत में उस जैसा अकर्मण्य बुद्धिहीन भौंदू लड़का संसार में अपनी माँ के सिवा और भी किसी के द्वारा सेवा पा सकता है, ऐसी उम्मीद करने में उसे शर्म मालूम होने लगी। दूसरे दिन सवेरे फटिक लापता हो गया। चारों तरफ पड़ोसियों के घर छान डाले पर कहीं भी उसका पता न लगा। उस दिन रात ही से सावन भादों की सी मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसलिए उसके ढूंढने में लोगों को फजूल में बहुत भीगना और हैरान होना पड़ा। अंत में जब कहीं भी पता न लगा तब विश्वम्भरनाथ ने थाने में खबर दी। सारा दिन इसी तरह बीत गया। शाम के बाद एक गाड़ी विश्वम्भर बाबू के दरवाजे से आकर लगी। उस समय भी वर्षा ज्यों की त्यों जारी थी। सड़क पर घुटनों पानी जम रहा था। दो सिपाहियों ने मिलकर फटिक को गाड़ी से उतारा और विश्वम्भर बाबू के पास पहुंचाया। देखा कि सिर से लेकर पैर तक वो पानी से भीगा हुआ है, तमाम देह पर कीच थुपी हुई है, मुंह और आंखें लाल हो रही हैं, जाड़े से थर थर कांप रहा है। विश्वंभर बाबू उसे दोनों हाथों पर उठाकर भीतर ले गए। मामी उसे देखते ही बोल उठी, क्या फजूल में पराए लड़के को लेकर जान आफत में डाल रहे हो? भेज क्यों नहीं देते इसे गांव को? वास्तव में बात यह थी कि तमाम दिन मारे फिकर के उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था और अपने लड़कों पर भी नाहक में गुस्सा होकर चिल्ल पुकार कर रहे थे। फटिक ने रोते हुए कहा, मैं तो जा रहा था माँ के पास, मुझे ये लोग झूठ मूठ के पकड़ लाए हैं। बड़े जोर का बुखार चढ़ा, सारी रात वो बाय में ऊट पटांग बकता रहा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर ले आए। फटिक ने एक बार अपनी लाल लाल आंखें खोलकर ऊपर छत की ओर हतबुद्धि की तरह देखते हुए कहा, मामा मेरी छुट्टी हो गई क्या? विश्वंभर बाबू रूमाल से आंसू पोंछते हुए बुखार से जलते हुए बच्चे के कमजोर हाथ को बड़े स्नेह से अपनी गोद में रखकर उसके पास बैठे रहे। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मारो मत, माँ मैंने कुछ नहीं किया माँ। दूसरे दिन जरा दिन चढ़ने पर कुछ देर के लिए फटिक को होश आया और न जाने किसको देखने की आशा से वो घर के चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अंत में थक कर हताश होकर वो चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके करवट लेकर सो गया। विश्वंभर बाबू ने शायद उसके मन की बात ताड़ ली। उसके कान के पास मुंह ले जाकर उन्होंने धीरे से कोमल स्वर में कहा, फटिक बेटा तेरी माँ को बुलवाया है, अब आती ही होंगी। अच्छा बेटा। उसके बाद दूसरा दिन भी गुजर गया। डॉक्टर ने चिंतित और उदास चेहरा बनाकर कहा, हालत तो बहुत खराब है। विश्वंभर बाबू टिमटिमाती हुई बत्ती के उजाले में रोगशैया के पास बैठे हुए फटिक की मां के लिए प्रतिक्षण प्रतीक्षा करने लगे। फटिक जहाज के खलासियों की तरह उन्हीं की राग में कहने लगा, एक बाप मिला नहीं, दो बाप मिला नहीं। कलकत्ता आते समय कुछ दूर तक वो स्टीमर में आया था। स्टीमर के खलासी लोग पानी में लोहा शुदा रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी मापते थे। बाय में पड़ा पड़ा फटिक उन्हीं लोगों के अनुकरण पर करुण स्वर से पानी मापने लगा और जिस अपार समुद्र में उसकी जीवन नैया गोता खा रही थी उसमें रस्सी डालकर बेचारे को कहीं भी उसकी थाह नहीं मिल रही थी। इसी समय आंधी की तरह फटिक की माँ घर के अंदर आ पहुंची और ऊंचे स्वर में रो रोकर शोक करने लगी। विश्वंभर ने बड़ी मुश्किल से बहन के शोकोच्छ्वास को रोका। बेचारी अपने प्यारे लाल की खाट पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रो रोकर पुकारने लगी, बेटा रे, अरे मेरा फटिक रे, मेरा सुआ रे। फटिक ने मानो बड़ी आसानी से इस पुकार का जवाब देते हुए कहा, हैं? माँ ने फिर पुकारा, मेरा बेटा रे, फटिक रे, अरे मैं आ गई रे। फटिक ने धीरे धीरे करवट लेकर किसी की ओर लक्ष्य न करके बहुत ही धीमे और विकृत स्वर में कहा, माँ अब मेरी छुट्टी हो गई, माँ अब मैं घर जाता हूं माँ। अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी छुट्टी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।